ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार। आज अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन भी देश के बड़े हिस्से में विजयादशमी का टीका और जयंती ग्रहण करने का क्रम रहा जारी। देश में अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। नेपाल में आज कोरोना के 147 नए मामले आए सामने, संक्रमित एक की हुई मौत। और दक्षिणी अफगानिस्तान की शिया मस्जिद पर शुक्रवार को हुए हमले की आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस ने ली जिम्मेदारी। अब समाचार विस्तार से। आज अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन भी अग्रजों और मान्यजनों से टीका और जयंती ग्रहण करने का क्रम देश के बड़े हिस्से में जारी रहा। बता दें कि नेपाल के पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में दशहरा के क्रम में टीका और जयंती ग्रहण करने का दौर विजयादशमी से लेकर कोजागृत पूर्णिमा तक चलता है, जिसे बड़ा दशहरा कहा जाता है। वहीं तराई क्षेत्र में आमतौर पर दशहरे की संपूर्ण प्रक्रियाएं विजयादशमी तक ही पूरी हो जाती हैं। दशहरे के दौरान वीरान हो चुकी काठमांडू घाटी में टीका और जयंती ग्रहण करने वालों की आवाजाही के कारण चहल पहल थोड़ी बहुत बढ़ने लगी है। महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी के मुताबिक कल के मुकाबले आज सड़कों पर सवारी साधनों की तादाद कुछ ज्यादा थी। इसके अलावा दशहरा मनाने घाटी से बाहर गए हुए लोगों के वापस आने का क्रम भी बढ़ा है। दशहरा के अवसर पर भक्तपुर के मध्यपुर ठीमे स्थित बाल कुमारी में मनाई जाने वाली कुभिंडू यानी कुम्हड़ा जात्रा आज संपन्न हुई है। बता दें कि हर साल दशहरा में घट स्थापना के दिन से ठीमी के लायको स्थित तलेजू मंदिर में जयंती रखकर शुरू होने वाली यात्रा आज संपन्न हुई है। यात्रा अंतर्गत पत्रिका प्रवेश यानी सप्तमी के दिन सिद्धिकाली मंदिर से तलेजू के दसई घर में पत्रिका प्रवेश कराकर नवमी के दिन भैंसे और बकरों की बलि देने की परंपरा है। इसी तरह नवमी के दिन कूत में बलि चढ़ाए गए भैंसे के सर और दशमी के दिन पूजन किए गए कुम्हड़े को आज एकादशी के दिन बाजे गाजे के साथ लायकू दरबार से दिगू भैरव की परिक्रमा कर बालकुमारी लाया गया था। कृषि तथा पशु पक्षी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव ने कहा कि दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा के लिए 10 साल में कृषि उत्पादों को दोब्बर बनाने की दिशा में सरकार केंद्रित है। आज 41वें विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर रेडियो संदेश के जरिए मंत्री यादव ने कहा कि मल बीज जैसी स्रोत सामग्रियों तक सबकी पहुंच सहज बनाने के लक्ष्य के साथ अनुदान और कृषि पेशा की सुरक्षा की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के उत्पादों की खरीद बिक्री में सहजता के लिए सहकारी के जरिए सभी स्थानीय तहों में खाद्य गोदामों का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि कृषि उत्पाद को बढ़ाते हुए खाद्य सुरक्षा पर जोर देने के उद्देश्य के साथ हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। सन 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन के आह्वान में यह दिवस मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक हर साल विश्व के 1 करोड़ लोग भुखमरी की चपेट में पड़ते हैं। मनकामना केबल कार आज से नियमित संचालन में आ चुका है। दशहरा अंतर्गत महानवमी और विजयादशमी के दिन सेवा बंद थी, जिसे आज से नियमित रूप में सुचारू किया गया है। ये जानकारी मनकामना दर्शन प्रणाली के नायब महाप्रबंधक उज्जवल शेरचंद ने दी। देश के अलग अलग स्थानों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं। सप्तरी में हुई अलग अलग 2 दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। सप्तरी की खड़क नगरपालिका वार्ड नंबर 4 अमहा स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों के आपस में टकराने से हुए हादसे में दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरने वालों में झापा की शिव सताशी नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के 22 वर्षीय विवेक सापकोटा और दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार झापा की ही भद्रपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 21 वर्षीय दयाराम सिंह राजवंशी की मौत हो गई। इस हादसे में महोत्तरी की मटिहानी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के 35 वर्षीय चंदन कुमार शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी तरह शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 8 मिलन चौक पर बस के द्वारा मोटरसाइकिल को दी गई टक्कर के कारण मोटरसाइकिल पर पीछे सवार सप्तरी की बलान बिहुल गांवपालिका वार्ड नंबर 6 के 40 वर्षीय प्रमोद मंडल की मौत हो गई। इसी तरह मकवानपुर की हटौड़ा वार्ड नंबर 15 राते माटो में बस द्वारा एक मोटरसाइकिल को टक्कर दिए जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। बीती रात नारायणगढ़ से काकड़भट्टा जाती हुई बस ने विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर दी थी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की हुई मौत की जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर ने दी। मरने वालों में हटौड़ा वार्ड नंबर 15 के 18 वर्षीय प्रकाश दियाली और हेटौड़ा वार्ड नंबर 3 के 22 वर्षीय सुशांत दियाली शामिल हैं। हादसे के बाद बस और चालक को नियंत्रण में लेकर अनुसंधान किया जा रहा है, ये बात पुलिस ने बताई। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक एवं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक बद्रीनाथ श्रेष्ठ के असामयिक निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री देउवा ने आज ट्वीट के जरिए उनके निधन पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति समवेदना व्यक्त की। पिछले 24 घंटों में देशभर में कोरोना के 147 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 845 मरीज संक्रमण मुक्त हुए, वहीं एक संक्रमित की मौत हो गई। बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 12,598 है। मौसम परिवर्तन के साथ सप्तरी में वायरल बुखार और सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सप्तरी के राजबिराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में इन दिनों वायरल बुखार, टाइफाइड, डायरिया, सर्दी खांसी, सर्पदंश लगायत विभिन्न रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। खासतौर पर बच्चों और महिलाओं में वायरल बुखार का प्रकोप अधिक देखा गया है। ये जानकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रंजीत झा ने दी। काभरे की भूमलू गांवपालिका वार्ड नंबर 8 में हुई माइक्रो बस की दुर्घटना में 18 लोग घायल हो गए। जिला प्रहरी कार्यालय काभरे से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब 11:30 बजे काभरे के काती के देवराली से काठमांडू की ओर आती हुई माइक्रो बस भूमलू गांवपालिका में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। पुलिस के मुताबिक घायलों में से एक पुरुष, एक महिला और दो बच्चों की हालत गंभीर है। दूसरी तरफ स्यांगजा के गल्यांग में बोलेरो जीप दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए। इस हादसे में घायल हुए लोगों में से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। सल्यान में दुकान, घर और विद्यालय समेत कुल दर्जन से अधिक स्थानों में चोरी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दशहरे के दौरान घर व दुकानों में कोई न होने के मौके का फायदा उठाकर अज्ञात समूह ने सामूहिक रूप में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के बाकी काम पूरा कर 1 साल के अंदर विमानस्थल को संचालित करने के हिसाब से काम हो रहे हैं। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंबर 14 छीनी डांडा में निर्माणाधीन विमानस्थल का अब तक 85% काम पूरा हो चुका है। ये जानकारी विमानस्थल निर्माण परियोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी के हवाले से हमारे संवाददाता अर्जुन श्रेष्ठ ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक श्रीनगर और पुलवामा में हुए चरमपंथी हमलों में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मजदूर दूसरे राज्यों के थे। पुलिस का कहना है कि श्रीनगर में एक चरमपंथी हमले में बिहार के बांका के अरविंद कुमार शाह की मौत हो गई और पुलवामा में यूपी के सहारनपुर के सागिर अहमद की मौत हो गई। इलाकों को घेर लिया गया है और हमलावरों की खोज की जा रही है। दक्षिणी अफगानिस्तान की शिया मस्जिद पर कल शुक्रवार को हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस ने ली है। कंधार प्रांत की इमाम बाग ए फातिमा मस्जिद पर नमाज के दौरान हुए आत्मघाती हमले में 47 लोग मारे गए थे, जबकि 70 से अधिक घायल हुए थे। तुर्की सार्वजनिक प्रसारक टीआरटी की रिपोर्ट के अनुसार कंधार की मस्जिद पर हुए हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ली है। हाल के दिनों में अफगानिस्तान में शिया मस्जिदों पर हमलों में तेजी आई है। एक हफ्ते के भीतर शियाओं की मस्जिद पर हुआ यह दूसरा हमला था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने मस्जिद पर हुए इस घातक हमले की निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अमेरिका ने भी इसे कायराना हरकत करार दिया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन भी देश के बड़े हिस्से में विजयादशमी का टीका और जयंती ग्रहण करने का क्रम रहा जारी। देश में अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। नेपाल में आज कोरोना के 147 नए मामले आए सामने, संक्रमित एक की हुई मौत। और दक्षिणी अफगानिस्तान की शिया मस्जिद पर शुक्रवार को हुए हमले की आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस ने ली जिम्मेदारी। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।